بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر سورہ ہے قرآن مجید کی، یہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، پچھلی کلاس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب آغاز ہوا ہے انسانیت کا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سجدے کا فرشتوں کو، اور جنات بھی ظاہر ہے شامل ہی تھے۔ ابلیس نے انکار کیا تو اس نے کہا جی میں اس سے بہتر ہوں، تو سکیم تو ظاہر ہے جو پلان تھا وہ تو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، اس لیے تو اس نے کہا ہے نا کہ مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک، یعنی قیامت برپا ہوگی، جزا و سزا ہوگی، یہ زمین پر جو ہے نا ایک محدود عرصے کے لیے رہنا ہے، یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ جو معاملہ ہونا ہے آزمائش کا وہ تو پہلے سے معلوم تھا، یہ ایک چیز اضافی شامل ہو گئی ہے بیچ میں۔ اس نے کہا جی مجھے بھی آپ مہلت دیں، میں بھی آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ جسے آپ نے مجھ پر عزت دی ہے نا، اکرام بخشا ہے، مجھے کہا ہے کہ اس کو بڑا مانو، سجدے کی شکل میں یہ چیز نمایاں ہوتی ہے نا، تو میں یہ بتاؤں گا دکھاؤں گا کہ یہ اس قابل نہیں ہے، اس کا یہ جو اکرام کیا آپ نے۔ وہ پھر اللہ نے مہلت دے دی ہے کہ ٹھیک ہے جس طرح تو چاہتا ہے ان کو گمراہ کر دے، اور ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ جو ہے نا ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، لیس لک علیہم سلطان، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یعنی بندے تو سارے اللہ ہی کے ہیں، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ صحیح معنوں میں جو میرے بندے ہوں گے نا، جو میرے بندے بن کر جئیں گے، میری بندگی پر قائم رہیں گے، تو وہ کیا چیز ہے؟ کفا بربی کا وکیلہ، وہ جو مجھے کارساز بنائیں گے، یہ اصل چیز ہے نا، یہ ظاہر ہے توحید کا پہلا ظہور ہی ہوتا ہے۔ تو یہ یہاں سے یہ واضح ہو گیا کہ شیطان کرے گا کیا کہ انسان کو، یعنی کہ اللہ کا بندہ بن کر جینا، یہ یہاں سے ہٹائے گا اس کو، اور اللہ کا بندہ بن کر جینا مراد کیا ہوتا ہے کہ وہ شکر گزاری اختیار کرتا ہے، اللہ کے جو احسانات ہیں اس کے اوپر ان کا اعتراف کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو اطاعت ہے وہ وجود میں آتی ہے۔ تو ابلیس نے چونکہ خود ہی ناشکری کی اور اطاعت نہیں کی تو انسان کو بھی اسی راہ پہ وہ لگانا چاہتا ہے۔ آگے پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہ یہ دیکھیں جو اس دنیا میں جو نعمتیں میسر ہیں، اور لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب وہ مشکل میں گھر جاتا ہے تو خدا اس کو یاد آ جاتا ہے، جب وہ آسانیاں ملتی ہیں تو خدا کو بھول جاتا ہے، یہ انسان کا جو رویہ ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ کان الانسان کفورا، یہ جو ہے نا وہ جو چیلنج کیا تھا ابلیس نے، اور یہ یہاں آ کے پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ انسان جو ہے نا یہ ناشکرہ ہے، کس طرح یہ ناشکرہ پن ظاہر ہوتا ہے کہ بھئی جو مشکلات میں اس کو خدا یاد آئے، اور آسانیاں جب ہوں تو خدا کو بھول کر کسی اور کو معبود بنا لے، اس کو نمایاں کیا گیا ہے، ظاہر ہے جو سامنے مخاطب ہیں وہ اس کا شکار ہے۔ اللہ نے کہا کہ بھئی یہ تم سمجھتے ہو کہ آپ حالت امن میں آ گئے ہو، وہ جب سمندر میں ایک طوفان آتا ہے تو وہاں خدا یاد آ جاتا ہے، خشکی پہ آ کے خدا کو بھول جاتے ہو، یہ ہر جگہ ہی خدا موجود ہے، یہ جسے تم امن کی حالت سمجھتے ہو نا، خدا تمہیں وہاں بھی پکڑ سکتا ہے، تو اس لیے خدا سے بے خوف ہو کر زندگی نہ گزارو، کہ کہیں تم سمجھتے ہو کہ بھی اب میں خطرے میں ہوں تو خدا کو پکار لوں سہارے کے لیے، اور کہیں تم خدا کو بالکل بھول جاتے ہو تو وہ خدا جو ہے وہ تمہیں کہیں بھی پکڑ سکتا ہے، وہ طوفان ہر طرح کی امن کی حالت میں وہ طوفان آ سکتا ہے۔ طوفان کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے جو واقعات سنائے ہیں وہی چیزیں جو انسان کے لیے ناگزیر ہیں انہی کو انسان اللہ تعالیٰ طوفان بنا دیتے ہیں، وہ پانی جس کے بغیر انسان جی نہیں سکتا، وہی ہوا جو اس کی ضرورت ہے، وہی زمین جس کے اوپر وہ چلتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کے لیے آفت بن جاتی ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ کہے کہ بھائی یہ حالات ہیں تو تم کدھر پھر رہے ہو، تو اس شعور کے ساتھ احساس کے ساتھ زندگی گزارو۔ پھر فرمایا جی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، یہ ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت بخشی ہے، इज्जत बख्शी है वाकई। ऊपर जो जिक्र हुआ कि फरिश्तों से कह दिया कि सजदा करो, इब्लीस ने खुद एतराफ़ किया कि हाँ भाई आपने तो यही चाहा है कि इसकी मैं इज्जत करूं, इज्जत बख्श दी है। यानी अल्लाह ने ये तो नहीं कहा ना कि इंसान को कि चलो भी फरिश्तों को सजदा करो या इब्लीस और जिन्नात को सजदा करो, इसके बरक्स हुआ है। तो ये तकरीम ही हुई है। अच्छा, ये तकरीम हुई है तो साथ ही इंसान को जो कुछ नेमतें बख्शी हैं, बहुत नुमायाँ चीज़ वही है कि इंसान को खुशकी और तरी में जो उसको सवारी अता फरमाई है। उस दौर के लिहाज से देखा जाए तो इंसान समुंदर में भी सफ़र कर रहा है और खुशकी पर भी सफ़र कर रहा है। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो हवाओं पर भी उसका कंट्रोल हो गया। वो वहाँ समुंदरी जो सफ़र था वो भी असल में हवाओं के सहारे ही था। जो बादबानी जहाज या कश्तियां थी, हवा ही के सहारे था। अब वो हवा ही के सहारे वो देख लें जहाजों पर सफर करता है। तो ये इस चीज की अलामत है कि उसको अल्लाह ताला ने इन चीजों पर एक तरह से कंट्रोल दे दिया है कि उनको इस्तेमाल में, कब्जे में ला कर, इस्तेमाल में ला कर वो अपनी जरूरतें पूरी करता है और दुनिया भर में वो घूमता फिरता है। दूसरा, अल्लाह ताला फरमाते हैं वरज़क ना हो मैंने तय्यबात, पकीज़ा चीज़ें, पकीज़ा चीज़ें जो उसकी फितरत, जो उसकी से मुनासिब रखने वाली हैं, जो उसकी फितरत चाहती है वो उसके लिए पैदा कर दी है, मैसर कर दी है। और इस तरह ये हुआ है कि बहुत सारी बज़ाहर यही लगता है कि बहुत कसीर मखलूक है जिस पर अल्लाह ने इंसान को फजीलत दे दी है, बरतरी दे दी है। यानी अज्ज़ा में तो हो सकता है मसलन किसी और मखलूक की सुनने की जो ताकत है वो इंसान से ज्यादा हो, देखने की ताकत ज्यादा हो, ये तो हो सकता है अज्ज़ा में। लेकिन बहसियत वजूद ही आप देखें कि इंसान ने जितनी मालूम मखलूकात हैं वो सब पर ही उसने जो है ना एक तरह से गलबा पाया हुआ है। तो ये मजमूई तौर पर फजीलत हासिल है उसको, तो ये अल्लाह ताला ने तवज्जो दिलाई है। अच्छा, फिर ये अब बता दिया है कि दुनिया में दो तरह के मामला चल रहे हैं, एक अच्छाई है, अच्छाई के जो लीडर हैं उनके पीछे चलने वाले, एक बुराई के पीछे चलने वाले हैं। तो आखिरत में ये दोनों जो है बुलाए जाएंगे, दोनों ग्रोह, तो उनका अमाल नाम उनके सपोर्ट कर दिए। कुछ है जो खुशी से अपना नाम अमाल पढ़ेंगे, कुछ हैं वो देखना भी गवारा नहीं करेंगे, उनको पता चल जाएगा कि भाई ये इसमें क्या है। तो अल्लाह कहते हैं उसूल ये है, ज़रा बराबर भी नाइंसाफी नहीं होगी किसी के साथ, सबके साथ मामला मेरिट पर होगा। अच्छा, ये जो है कि असल मसला क्या है वो ये है, इस दुनिया में इंसान अंधा बनकर जीता है या देखता सुनता। अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें उसको दी हैं वो उनको इस्तेमाल करता है, और अल्लाह की निशानियां जो यहाँ फैली हुई हैं उनकी तरफ ध्यान देता है या उनको नज़रअंदाज करके जीता है। इसी के लिहाज से आखिरत में मामला होना है। जो यहाँ आंखें खोल कर जीता है वो सिरात मुस्तकीम पर है, वो एक नवाज़ नतीजे पर पहुँचता है ना कि उसका अगर रब है और उसकी बंदगी करनी है वो मंजिल मकसूद तक पहुँचेगा। दूसरा आदमी है जो एराज बरत के जीता है, खुदा को नज़रअंदाज करके भूल कर, वो गोया के अंदा है, तो उसको ज़ाहिर है वो सिरात मुस्तकीम से दूर पड़ा हुआ है। तो यही चीज़ आखिरत में जाके नुमाया हो जाएगी कि एक आदमी जो है मंजिल मकसूद पे पहुंचेगा सिराते मुस्तकीम पे चलता हुआ, दूसरा आदमी जो है वो जो सीधा रास्ता उससे बहुत दूर पड़ा होगा और मंजिल मकसूद से बहुत दूर। ये चीज़ बयान होगी। अब देखिए, ऊपर था कि इब्लीस को इख्तियार दिया अल्लाह ने कि भाई जो तू करना चाहता है कर गुजर। तो जाहिर अब ये सवाल पैदा होता है ना कि भाई वो इब्लीस तो जिन्नात में से है, उसकी जुरियत सारी, तो वो इंसानों के साथ कैसे मामला करता है या हम उससे कैसे बचें। तो जाहिर है वो ख्याल डालना, वसवसा, ये तो वो करता ही है। तो और जाहिर है इंसान की जो है ना कीमती जो चीज़ है ना उसके पास ये ख्यालात ही हैं, यानी यही ख्याल जो है ना वो इरादे में ढलते हैं, वो इरादा है जो अमल की सूरत इख्तियार करता है। तो जो ख्याल पे काबिज हो गया ना या वो ख्याल में मुदाखलत करने में कामयाब हो गया वो ये मामला अमल तक जाएगा। तो एक तो ये है कि उससे बचना है, अगर उसकी चालों से जो भी वो करना चाहता है हर तरफ से हमला करेगा, हर तरह के ख्यालात पैदा करेगा, तो उसका तरीका यही अल्लाह ने बताया है कि वो अल्लाह की पनाह में आ जाए आदमी, जब उसको लगे कि भाई ये ख्याल जो ना वो गलत समत में जा रहे हैं, तो वो अल्लाह की पनाह में आ जाए फौरन। अच्छा, दूसरा शैतान क्या करता है कि वो अपने चेले तैयार करता है, अपने जो है ना वो लीडर है ना इमाम, तो वो अपनी पूरी एक टीम तैयार करता है। वो इंसानों में से भी होते हैं, तो वो उनके जरिए भी ये काम करता है। इसलिए अल्लाह ने कहा है कि अपने प्यादे ले आओ, अपने वो सवार ले आओ, जो तुम करना चाहते हो सामने ला खड़े करो, हर तरह की जो आवाज होगा जो है उससे मुकाबला कर लो, गुमराह करने की कोशिश करो। तो इसलिए वो भी ऐसे लोग उठाता है, ऐसे लीडर उठाता है जो सिराते मुस्तकीम से हटाने के लिए हर तरह की कोशिश करते हैं, और पैगम्बरों के जो वाकयात हैं और उनकी जो मुखालफतें जैसी हुई हैं वो सब जो है ना वो हमारे सामने है कि किस तरह शैतान ने उनको हक के मुकाबले में ला खड़ा किया। तो ये दोनों ही चीज़ें होती हैं, जाहिर में भी शैतान के जो जो अवानो अनसार हैं वो, और हमारे बातन में जो वो ख्यालात पैदा करता है। अच्छा, अब ये यहां से गालन उन्होंने पढ़ना था, यदि वह इनकादू लयफ्तिनू ना का, करीब था कि तुम्हें फितने में डाल दें। ये नबी अलैहिस्सलाम अब दावत हक पर खड़े हैं और सामने जो मुखालफीन हैं वो कौन है, वो शैतान के जो चेले हैं, इमाम जो शैतान है, और शैतान ने उनको मुकाबले पे ला खड़ा किया। वो क्या कर रहे हैं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि करीब था कि तुम्हें फितने में डाल दें, अनिल्लज़ी अवहैना इलैका, जो वही हमने आपकी तरफ की है उससे आपको ये हटाकर फितने में डाल सकते थे, करीब था कि आप फितने में पड़ जाएं। यानी हैं कौन, पैगंबर। शैतान की चालें जो ना इस कदर जो है ना वो हैं कि पैगंबर तक पहुंच गया वो मामला। तो अल्लाह कह रहे हैं कि हो सकता था कि आप भी जो ना शिकार हो जाते, क्योंकि पीछे उसने कहा ना कि सारी जुरियत को मैं चट कर जाऊंगा सवाए थोड़ों के, आदम की जुरियत को मैं सफाया कर जाऊंगा, तो कुछ बचेंगे बस। वो बता दिया कि मेरे जो बंदे होंगे वो बच जाएंगे, तो पैगंबर तक जो ना मामला चला गया। तो अल्लाह कहते हैं कि हो सकता था कि ये लोग जो है ना, ये जो तुम्हें मैसेज हम दे रहे हैं, हक बता रहे हैं, ये हो सकता है कि आपको वहां से हटा देते, उस हक बात से। लितफ्तरी अलैना, कैसे हटा देते कि आप हमारे ऊपर कोई इफ्तरा करते। यानी अल्लाह ने जो कुरान नाजिल किया है उसमें जो बात बयान हुई है वो ज़रा असल मामला तो तौहीद और शिर्क का है ना, तो ये इम्कान था कि वो यहाँ तक ये जो हमलावर हुए हैं तो आप जो है उस दावत से हटकर मुख्तलिफ बात बयान करने लग जाते, यानी कुरान जो दिया जा रहा है उसमें कोई ऐसी बात शामिल हो जाती जो कि अल्लाह की तरफ से नाजिल नहीं की गई थी। लितफ्तरी अलैना गैरहू, यानी गैर अल कुरान। अच्छा, ये क्यों होता, ये ऐसे ही है जैसे है ना इब्लीस ने वहां ये किया आदम के साथ। वो आदम जाहिर है उसको लालच क्या दिया, लालच क्या, जाहिर है जो चीज इंसान के अंदर है उसी को उठाएगा ना, उसी की बुनियाद पर ही वो करेगा सारा कुछ। तो इंसान के अंदर ये चीज है कि वो चाहता है अब्दियत, हमेशगी, मरना नहीं चाहता वो, और इख्तियार, इक्तदार, बादशाहत ये इंसान चाहता है, चूंकि वो दुनिया में है ही, उसके पास ये हर चीज पर उसने जो है वो बादशाह तो कर रहा है, तो इसी को उसने इस्तेमाल किया और कहा है कि इस दरख्त से इसलिए रोका है कि तुम्हें ये चीजें हासिल हो जाएंगी, बस यहां से वो फिसलाया है आदम को, बार बार आके कहा है कि मैं तुम्हारा खैर खाऊं। तो यहां भी यही मामला होता है, पैगंबर चूंकि हरीस होते हैं, जो दाई होते हैं ना हक के, उनको तो फिक्र होती है कि किसी तरह ये जो हमारे मुखातबीन हैं ये जो ना हक की राह पर आ जाएं, तो इसलिए ये इम्कान हो पैदा हो जाता है कि कभी शायद कोई इस जगह पर आकर के जहाँ समझौते की भी शक्ल निकल रही हो, या लगे कि भी शायद, जैसे नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से एक और मिसाल भी आई ना कुरान मजीद में, कि आपने वो कुरैश के जो लीडर थे उनको बात समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि शायद ही मेरी बात समझ जाए, दावत जो है इन तक पहुंच जाए, और इस दौरान में एक सहाबी आ गए हैं, नबीना सहाबी, तो आपने ये नापसंद किया उनका आना, बस यही किया है। चेहरे से ना तेवरी चढ़ाई आपने कि भाई ये ना आते तो अच्छा था, क्योंकि वो लीडरशिप है और ये आम आदमी है। तो लीडरों का मामला ये होता है कि उनका अपना उठना बैठना रहन सहन और प्रोटोकॉल, तो उनके लिए ये नागवार हुआ या हो सकता था कि एक आम आदमी उस मजलिस में आ गया जिसमें लीडरशिप के साथ मीटिंग हो रही है। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना एक नागवारी ऐसे चेहरे पे जाहिर की, तो अल्लाह ताला ने फौरन गिरफ्त फरमाई। हालांकि वो जो चीज़ जो भी मामला हुआ वो खैरख्वाही के लिए था। पैगंबर तो ये चाहते थे कि भाई ये किसी तरह लीडरशिप जो है ना ये मेरी बात जो है ना मान ले। तो ऐसे हो सकता है किसी मौके पर कि पैगंबर जो है ना जानब खैर, पैगंबर हमारे हम ये तो नहीं कहते मानते कि वो जानब शर कोई गलती करें, लेकिन वो जानब खैर जो है ना खैरख्वाही के हवाले से, तो वो इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है पैगंबरों से। जैसे दूसरा वाक्य कुरान ने कहा है कि आपने बाज़ अजवाज की खातर जो है ना कह दिया कि ये चीज़ मैं नहीं इस्तेमाल करूँगा, वो अल्लाह ने उस पर भी गिरफ्त फरमाई फौरन। हालांकि आप अल्लाह कहा कि अजवाज की दिलदारी की खातर, वो भी पैगंबर का अपना मसला नहीं था, वो भी जानब खैर ही था मामला। तो इसी तरह का मामला इधर है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि भाई हो सकता था कि आप कुरान जो मैसेज दे रहा है उससे ज़रा हट जाते, ये आपको फितने में डालने में कामयाब हो जाते। व इज़ल तखज़ू का खलीला, अगर आप ऐसा करते तो ये आपको दोस्त बना लेते। वो ज़ाहिर है कि हर तरह से जो है ना आपको मालूम है कि उनको पेशकश भी बहुत हुई है। दो चीज़ें होती हैं, एक लालच होता है, खौफ होता है। तो पैगंबर को लालच जो है ना वो यही होता है कि ये किसी तरह ही मान ले आए। तो इसमें हो सकता है कि पैगंबर कहीं इस मामले में फिसल जाएं हक की जानब, तो उसका ये जिक्र किया जा रहा है कि अगर आप ऐसा करते तो ये इन्होंने आपको ना दोस्त बना लेना था, अब तो दुश्मनी कर रहे हैं ना। क्यों बना लेना था कि वो कि ऐसा उन्होंने समझौते की बात करनी थी कि वो जो छोड़ना नहीं चाहते थे उस पर वो कायम रहते। जैसे मदीना में आप गए हैं तो मुनाफिकीन जो हैं जो अहले किताब की तरफ से आए थे उन्होंने भी यही चाल चली। उन्होंने कहा जी कोई समझौते की राह निकालते हैं कि ईमान तो वो भी रखते हैं, ईमान ये आप लोग भी मुसलमान भी रखते हैं, पैगम्बरों को वो भी मानते हैं, अल्लाह को वो भी मानते हैं, सिर्फ एक पैगम्बर का झगड़ा है ना। वो कहते हैं जी हम ये बनी इस्माइल का जो पैगम्बर है इनको नहीं मानते हैं। तो उन्होंने भी कोशिश की कि समझौते गिरा निकल आए। तो अल्लाह ताला ने वहाँ भी जाकर ना ये मुदाखलत की बीच में कि ये जो कह रहे हैं ना कि ये खैर ये इसलाह का काम है, ये असल में इसलाह नहीं, ये फसाद है। तो इस तरह का मामला इधर भी हुआ हो सकता था कुरैश के यहाँ। वलौला अन सब्बतना का, अल्लाह कहते हैं कि अगर ऐसा ना होता कि हम आपको साबित कदम रखते, अगर हमने आपको साबित कदम ना रखा होता, लकद किता करीब था तरकनू इलैहिम, कि आप उनकी तरफ झुक पड़ते शैयन कलीला, थोड़ा सा कुछ आपकी तरफ से उनकी तरफ झुकाव हो जाता। ये शैयन कलीला नहीं कहा है, ज़ाहिर पैगंबर है वो भी, ऐसा तो नहीं है कि सिराते मुस्तकीम छोड़कर। लेकिन अल्लाह को हक के मामले में ये भी गवारा नहीं है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि एक तेवरी तो चढ़ाई ना आपने, आवास वतवल्ला, और कुछ भी नहीं किया आपने, नाव की बात की है, बस एक चेहरे पे शिकन आई है पेशानी पे, तो अल्लाह ताला ने फौरन जो है ना गिरफ्त फरमाई है कि नहीं भाई ये भी नहीं काबिल कबूल। तो इसी तरह का मामला इधर अल्लाह तआला कहते हैं कि ये हो सकता था कि आपका कुछ झुकाव उधर हो जाता। ये क्यों हो जाता? क्योंकि इधर से हमला ही ऐसा हो रहा है, हमला ऐसा हो रहा है कि हो सकता है आप झुक जाते, लेकिन अल्लाह ने आपको साबित कदम रखा है। ये वैसे ही मामला है जैसे यूसुफ की मिसाल हमने पढ़ी कि वो जो जलीखा जो है उसको उनको बरगला रही है, तो अल्लाह ताला ने कहा कि भाई हो सकता था कि यूसुफ भी जो ना उधर झुकाव हो जाता, लेकिन वो बुरहान देखी अल्लाह की तरफ से उन्होंने। ऐसी सूरत में जो अल्लाह के जो बंदे होते हैं, अल्लाह ताला मदद को आते हैं, उनको फौरन एहसास हो जाता है। जैसे अल्लाह ने कहा ना कि जब तुम्हें लगे कि भी शैतान ने कोई ठोकर लगा दी है, वसवसा डाल रहा है, तो फौरन खुदा की पनाह में आ जाओ। तो ऐसे ही है कि जब लगे कि भाई ये मैं फिसलने लगा हूँ, तो कोई ऐसी चीज आती है कि आदमी बचना चाहे तो बच जाए। तो वो हज़रत यूसुफ की मिसाल सामने है, वो बच निकले। इसी तरह का मामला ये है। अल्लाह कहते हैं हमने आपको साबित कदम रखा, वगरना हो सकता था कि आप कुछ झुक जाते उधर। इजन अगर ऐसा होता लाजक ना का, तो हम आपको अजाब चिखाते, जेफल हयाती व जेफल मौत। जिंदगी का भी दोहरा अजाब और आखिरत का भी दोहरा अजाब, मौत का भी दोहरा अजाब। क्यों? क्योंकि रुतबा जिनका बुलंद है, जाहिर आजमाइश भी सख्त है। ये अजवाज मुतहरात के बारे में फरमाया ना कि अगर तुम की गलती करोगी तो उसकी सजा डबल है, अजर भी दुगना है और सजा भी डबल है। सुम ला तजिदुल का अलैना नसीरा, फिर आप हमारे मुकाबले में किसी को मददगार ना पाते। अच्छा, ये जो है ना बात, देखा जाए तो बहुत बड़ा जुर्म तो नहीं है कोई। पैगम्बर, ये ऐसा तो नहीं हुआ कि पैगम्बर ने कोई अपने फायदे के लिए या नफ्स से जो है ना वो गलबे में आकर तो कोई गलत की ऐसी हरकत कर डाली हो, हक से फिर गए हों। ये अल्लाह ताला इतनी बहुत ज्यादा जो है ना, वो लगता है कि शिद्दत के साथ गिरफ्त फरमाई है। ये इस पर सवाल पैदा हो जाता है जहनों में कि ऐसा क्यों अल्लाह ताला करते हैं। जहां भी मौका है ना पैगम्बरों की, अल्लाह तआला ने ना गिरफ्त शदीद होती है। तो एक तो जाहिर है मामला ही ऐसा होता है पैगम्बरों से अल्लाह तआला होता है ना। बाज हम भी आपस में बाज लोगों से हमें ये नहीं होता कि वो ये काम करेंगे इस तरह का, तो वहाँ गिरफ्त शदीद होती है हमारी तरफ से भी कि भाई हमें ये तवक्को नहीं है तुमसे। कि बाज लोगों के बारे में ये नहीं होता कि पता होता है कि अच्छा भी है तो कर ही जाएंगे। ऐसी अल्लाह तआला ये तवक्को नहीं है अल्लाह को कि भाई मेरे पैगम्बर ऐसा करेंगे। एक तो ये बात है, दूसरा वो जो मुखातबीन होते हैं ना, उनको एक मैसेज देना मकसूद होता है कि भाई खुदा हक के मामले में अपने पैगंबरों के साथ अगर ये सख्ती, इस सख्ती पर खड़े हैं, तो हम जो समझ रहे हैं कि कोई समझौता हो जाएगा, बीच की राह निकल जाएगी, निकल आएगी, ये हक को ना माने तो कोई बचत हो जाएगी, तो उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। असल में ये मैसेज वहां कन्वे होता है कि जो लोग हक को छोड़कर, वो ना वो उन्होंने ये वेसलन बनी इसराइल कह रहे हैं जी वो हम तो पैगम्बरों की औलाद हैं, हमारा तो चुनाव हो चुका है, तो हमें जो सजा मिली भी दोजा की तो 2-4 दिन मिल जाएगी, जन्नत तो हमारे लिए बनी है। तो अल्लाह ने पूरी हिस्ट्री खोल के उनके सामने रख दी कि अल्लाह कोई और तो नहीं हो जाएगा ना, यही अल्लाह है। दुनिया में तुम्हारे साथ उसने क्या मामला किया, कैसे फेंटी लगाई तुम्हें, तो आखिरत में अब क्या हो जाएगा, यही मामला होगा, मेरिट पर ही फैसला होगा। तो ऐसे ही ये मैसेज कन्वे होता है कि भाई वहाँ ना कोई शफात काम आनी है, ना कोई मददगार है, ना कोई मुआवजा लिया जाएगा। असल में हक के मामले में सिर्फ मेरिट पर मामला होना है। इस कदर जो सख्ती के साथ जो मैसेज कन्वे किया जाता है ना, पैगम्बरों को बात सुनाई जा रही होती है, असल में मकसूद क्या होता है कि मैसेज वहां तक पहुंचे जो मुखातबीन है। तो इसलिए लगता है मौलाना इस्लाही तो नहीं मानते, वो कहते हैं कि ये पैगम्बरों के लिए गिरफ्त है ही नहीं। असल में तो उनको बताया जा रहा होता है कि हक और बातिल का मामला किस कदर हसास है खुदा के नज़दीक, तो ये मैसेज उनको कन्वे हो जाए, ये मकसूद होता है।
यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक्य भी सामने।
जी
अस्सलाम
अच्छे,
वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम।
सर ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो कहा है सब्बत ना का, तो ये पीछे जो बार बार आया है, पहली शुरू में भी आया वकीला, ठीक है ना,
ऐसे
तो ये वही चीज है। तो मुझे लग रहा है कि
बिल्कुल
अल्लाह ताला जो है उनको किसी हालत में नहीं चाहते कि पैगंबरों को कि जरा भी वो जो वकील बनाने उसमें जरा भी बाल बराबर भी खराबी आए,
हाँ जी, ऐसे ही है। इनसे ये भी
ना?
पता चला कि जो शैतान, वो ना जो मेरे बंदे होंगे, वहां अल्लाह ने बताया ना कि जो मुझे वकील बनाएंगे, कारसाज
जी
बनाएंगे, यानी कि मैं हूं कारसाज। है ना, अल्लाह ने कहा कफा बिल्लाह वकीला,
जी
यहाँ था ना,
जी जी बिल्कुल
वकफा बिरब्बी का वकील हो,
जी
ये काफी है तेरा परवरदिगार कारसाजी के लिए। यहाँ भी ऐसे ही हुआ, अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने तुम्हें साबित कदम रखा है, वगैरह मैं
जी
वो शैतान, तो वो जो ऊपर उसने कहा है ना कि मैं तो सफाया कर जाऊंगा,
जी और
वो
हजरत
बिल्कुल
यूसुफ अलैहि सलाम के मामले में भी यही हुआ कि उन्होंने वकील बनाया अल्लाह ताला को, तो फिर अल्लाह ताला ने उनकी मदद की।
हाँ, यानी कि जो अल्लाह के भरोसे पर अल्लाह को वकील
जी
बनाता है, तो इस तरह के मौके पर अल्लाह ताला फिर मदद को आते हैं,
जी
ये इससे मालूम होता है। और ये पूरी बहस देखिए शुरू ही से देखें इस सूरा में, ये जो वकील बनाना, अल्लाह को कारसाज बनाना, इस पर ये बार बार जिक्र हो रहा है सूरा के आगाज से लेकर। बनी इसराइलों ने हमने किताब दिखा है कि अल्लाह ही को वकील बनाना।
और सर ये भी लगा मुझे, जैसे आप कहते हैं ना कि इसको बार बार पढ़ें, तो उसमें ये भी लगा, देखिए आयत नंबर 2 में भी ये है कि उनका जुर्म ये है कि वो उन्होंने वकील नहीं बनाया बनी इसराइल ने, और उसके आगे ही फिर ये कह दिया कि हजरत नूह अलैहि सलाम के बारे में कि वो इन्नहु काना अब्दन शकूरा। तो मुझे ये लगा कि एक पहलू इसका वकील का ये भी है कि वो शुक्रगुजारी, उसी
जी
पे भरोसा, उसी की
शुक्रगुजार,
शुक्रगुजारी भी आ जाएगी।
हाँ जी
जहाँ शकूर
शुक्र,
आया है, तो जहां शकूरा आया वहां भी मुझे ये लगा कि एक पहलू ये भी है जहां पे
पूरा
वो ये
दीन जो है
तमसीलें
ना,
बयान की गई हैं।
पूरे दीन की बुनियाद ही है शुक्रगुजारी, उसी से
जी
बाकी सारी चीजें फूटती हैं।
जी
शुक्रगुजारी से इताअत फूटती है, उसी से वो रब पर जो भरोसा है, जो कि उसको वकील बनाने तरफ ले जाता है, वो भी उसी से फूटता है। और यहाँ भी कहा ना,
तो
ला तजिदु लकुम वकीला,
जी सर ऐसा
यही
भी लग रहा है ना कि जैसे शुरू में मुझे एक दफा पढ़ने से ऐसा लगा कि जैसे शुरू में बता दिया ना कि ये कि उन्होंने वकील नहीं बनाया, और ये हजरत नूह अलैहि सलाम का ये बता दिया कि वो शुक्रगुजार बंदे थे, तो अब उसी को तमसीलात में यहाँ बताया गया, जैसे उसकी तफसील बता दी है कि वो कुरान है ना दूसरे दूसरे पहलुओं से लेकर आता है कि किस तरह इंसान समझ जाए, तो वो फिर पता चला कि उसमें एक पहलू ये भी आ गया कि वकील बनाने का एक मकसद ये, और शुक्रगुजारी का एक इस तरह भी होती है कि इंसान हर हाल में अल्लाह को याद रखे, मुसीबत में भी याद रखे और मुसीबत टलने के बाद भी याद रखे।
जी ऐसे ही है, एक ही बात है जो मुख्तलिफ, जैसे अल्लाह ताला ने वहां कहा ना
जी
मुअक्कदतैन में कि भाई जो हर तरह का शर है ना, इससे बचने का एक ही तरीका है कि अल्लाह की पनाह में आ जाओ, अल्लाह की पनाह में आ जाओ, यानी कि वकील बनाओ उसको,
जी
वही बात है। तो यहाँ भी जब ये वाक्या ऊपर नकल किया अल्लाह ताला ने आदम और इबलीस का, एंड पे अल्लाह ने यही कहा है कि भाई अल्लाह जो है ना तुम्हारा रब काफी है वकील के तौर पर,
जी
यही
जी
कहना क्या
बिल्कुल।
चाह रहे
वहां
हैं
हाँ वहां भी ये
कि
देखिए कि इसी बात को पैगंबर को भी
के
ये बावर करवाया, दोबारा याद दिहानी
बचना
करा
है,
दी है
अगर
ना।
शैतान के हमलों से बचना है तो अल्लाह को वकील बनाओ, ये है असल में।
जी
तो अल्लाह ताला फिर यहाँ भी ये हुआ, अल्लाह कहता है कि हो सकता था कि ये जो शैतान साहब हैं, ये इन जो वरगलाया लोगों को मुकाबले पर, प्यादे भी आ गए हैं, सब आ गए हैं, तो किसी तरीके से आपको भी हटा देते, जैसे आदम के साथ हुआ ना, वो
जी
साबित कर, अल्लाह ने कहा है कि वो अहद पर कायम नहीं रहे, अहद क्या था कि मैं तेरा बंदा बन के रहूंगा, तेरी बात मानूंगा। तो आदम ने वो, अल्लाह ने कहा है कि ये दरख्त के पास नहीं जाना, वो चले गए, अल्लाह ने कहा है कि ये नाफरमानी की, साबित कदम नहीं रहे वो। तो यूँ ही अल्लाह ताला यहाँ भी बता रहे हैं कि ये हो सकता था कि ये साबित कदमी आपको ना मुयस्सर होती, ना मिलती, लेकिन अल्लाह ताला चूंकि वकील हैं, बनाया हुआ है, तो इसलिए वो अल्लाह ताला ने मदद को आए हैं और साबित कदम रखा है। इससे मालूम होता है कि जिस आदमी जिस मैदान में है ना, मतलब दावत के मैदान में, अगर जिस दर्जे का वो काम कर रहा है, तो वो मुखालफतें भी उतनी ही होती हैं, और हक पर कायम रहने के लिए साबित कदमी भी उतनी ही जरूरी होती है। ये आगे अल्लाह बताएंगे, ये मदद को आना ऐसे नहीं होता, अल्लाह ताला जाकर बताएंगे कि आप साबित कदम रहना है तो क्या करें। चलिए, वइन कादू लयस्तफिज़ूनका, ये वही है जो ऊपर आया था शैतान के ना, कि तुम जो है ना इनको उखाड़ सकते हो, तो उखाड़ दो इनके कदम, अल्लाह ने
सर
इख्तियार
मेरा
दे
एक
दिया।
छोटा सा क्वेश्चन है कि
जी
वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो आता है ना कि आपसे पूछा गया कि क्या आपके साथ भी शैतान है, तो आपने बताया कि हाँ है लेकिन मैंने उसे मुसलमान कर लिया, तो
जी
फिर उस बात को हम इसमें कैसे एडजस्ट करें?
हाँ वो ये मैंने अर्ज किया ना पहले कि ये शैतान की तरफ से जो हमला है ना, वो देखा जाए तो उसके दो पहलू हैं। एक है कि जो आपके साथ लगा हुआ है उसने आपके ख्यालात में ना वो वसवसा डालना है, ख्यालात को, ठीक है। दूसरा वो है जो दूसरे लोगों को वसवसा डाल के तो मुकाबले पे ले आता है। आप पैगम्बरों के मामले में देखें तो वो जो दूसरे लोगों को, जो उसके शैतान के चेले होते हैं, दूसरे इंसानों को, जैसे यहूद ने किया कि वो मुशरिकीन अरब दूसरे कबाइल को मुकाबले पर ले आए, खुद नहीं वो आगे आए मुकाब मैदान जंग में, दूसरों को ले आए। ऐसे ये शैतान भी करता है कि दूसरों को ला के मुकाबले पर। तो ये शैतान वो वाला जो कि जिसने वसवसा डालना है ना, ख्याल पैदा करना है जो लगा होता है बंदे के साथ, उसके बारे में वो फिर नबी अलैहिस्सलाम का फरमान बिल्कुल ठीक है कि शैतान आपके दिल में कोई वसवसा ऐसा डाले कि आपको मुतासर कर दे, आप वो ख्यालात आपके ऐसे मुतासर कर दे कि आपकी गलत इरादा कर लें या गलत इकदाम कर डालें, उस बारे में होगा फिर।
जी
क्योंकि
ठीक
ये
है।
तल्लड़ ने बता दिया ना कि ये खारिज में जो शयातीन है ये ना, इनकादु लयफ्तिनूना का, ये जो खारिज में शयातीन है ये तुम्हें फितने में डाल सकते थे, ये वाले जो शयातीन है। जी तल्ला साहब,
जी सलाम वालेकुम।
वालेकुम
वो
सलाम।
एक आयत नबी ने जब भी तमन्ना की तो शैतान उसके अंदर मुदाखलत करने की कोशिश, मुझे इस वक्त
बिल्कुल
आया
बिल्कुल
याद तो
हाँ
नहीं है कि
बिल्कुल
किस
जी
जी ये ना उसको अपनी तरफ से जो मुदाखलत उसे करनी है ना वो करता है,
वो
लेकिन अल्लाह ताला जैसे ये कह रहे
यही
हैं कि अगर मैं तुम्हें अगर मजबूत न रखता तो ये हो जाता, या फिर अल्लाह की बुरहान, तो उसकी मुदाखलत हर का है, मतलब नबियों के साथ भी है उसकी मुदाखलत।
बिल्कुल है। और वो नबियों के खिलाफ ना वो लोगों को उठा खड़ा करता है, ये भी दूसरे का बयान हुआ है ना, वो पैगंबरों
जी
के दुश्मन जो है ना, वो जो फिरौन है, अबू जहल है, अबू लहाब है, कहीं कोई है, कहीं कोई है, ये शयातीन शैतान उठा के सामने खड़ा कर देता है मुकाबले पे। अच्छा जी,
अब
करीब
भी
है ये
होता
कोई,
है
हाँ जी अब भी होता है, करीब है कि ये
जी
तुम्हारे कदम उखाड़ दें। ये वही लफ्ज जो ऊपर आया था कि शैतान को जब इख्तियार दिया कि भाई तू जो कर सकता है इनके कदम उखाड़ दे, तो लगा कि करीब है कि ये तुम्हारे कदम उखाड़ दें, मिनल अर्ज, ये इस जमीन से, मक्का की बात हो रही ना, लियुखरिजू का मिन्हा, ताकि तुमको यहां से निकाल बाहर करें। वो प्लान उनका यही हो रहा है ना कि ये क्या किया जाए, इनको मार दिया जाए या यहां से भगा दिया जाए, क्योंकि सहाबा तो आपको पता है कि जान बचा के भागे हैं, हबशा की तरफ गए हुए हैं, तो बाकी ये पैगंबर के साथ क्या मामला करना है, तो ये अब हो रहा है। अल्लाह कह रहे हैं कि करीब है कि ये इस जमीन से आपको यहां से निकाल दें, और ऐसे ही हुआ, निकाल बाहर किया नबी अलैहिस्सलाम को। व इज़ल ला यलबसून खिलाफ का इल्ला कलीला, जब अगर ऐसा करेंगे ये आपको यहां से निकाल लेंगे तो इसके बाद ये भी कोई ज्यादा अरसा नहीं यहां रह सकेंगे, ठीक है। यानी कि हुआ क्या है, ये सूरह नाजिल हुई है हिजरत से कुछ पहले, ठीक है, तो उसके तकरीबन यूं समझ लें कि लीडरशिप तो 2-3 साल बाद ही मारी गई सारी गजवे बदर में, ये जो इनके सरबराह थे, इमाम थे, तो उनके साथ तो फैसला वही हो गया ना, अबू जहल अबू लहाब वगैरह का। बाकी सारे जो लोग हैं जो मुखालफीन हैं वो तकरीबन मेरा ख्याल 8-10 साल लगे हैं, 8 हिजरी में हो गया है ना मक्का फतह गालबन, तो उसके बाद देख लें। वो अल्लाह ने कह दिया कि अब जहां पाए इनको कत्ल कर दो, मार दो, इनको नहीं यहाँ टिकने दिया जाएगा। और जाते ही मदीना में अल्लाह ने कह दिया, टारगेट ये दे दिया कि जहां से इन्होंने तुम्हें निकाला ना, तुम इनको वहां से निकालो, और ये फितना जो फैला रहे हैं इसको जो है ना खत्म करो, और दीन अल्लाह ही का गालब कर दो यहाँ। तो उसका आगाज हुआ गजवा बदर से, लीडरशिप वहां मार दी गई, और बाकी आहिस्ता आहिस्ता सारा उनका जो था वो इक्तदार वो खत्म हो गया 7-8 साल में। सुन्नत मन का तरसलना, लगते हैं कि ये अल्लाह की सुन्नत है, याद रखो अल्लाह की सुन्नत को, जो मन अन कद अरसलना कबला का मेरे रसूलिना, कि अपने रसूलों को हमने भेजा तुमसे पहले, उनके जरिए जो सुन्नत अल्लाह की तरीका बरपा हुआ है उसको याद रखो। नबी अलैहिस्सलाम को जो पिछले पैगम्बरों के वाक्या सुनाए जाते थे ना, एक तो ये था कि नबी अलैहिस्सलाम को भी सुनाए जाते थे कि साबित कदम रहे हैं, जैसे कुरान ने कहा है ना कि ला तकुन कसाहिबिल हूत, मछली वाले यूनुस की तरह नहीं होना तुमने, ठीक है। और ऐसे दूसरे पैगम्बरों के वाक़ा सुना कर वो कहा कि उलुल अज़्म, ये उलुल अज़्म पैगम्बर थे, आपने भी ऐसे ही अज़्म और हौसले से काम लेकर ना साबित कदम रहना। और ज़ाहिर है उनको भी सुनाया जाते थे ये वाक़ात जो मुखालफीन है कि तुम्हारे साथ ये होना है। तो अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह की सुन्नत को याद रखो, जो हमने पहले रसूल भेजे हैं उनके मामले में क्या हुआ कि जब भी कौम ने उनको निकाला है तो पीछे से उन पर अजाब आ गया। तो अब आपको ये निकाल लेंगे अगर, क्योंकि रसूल जो है वो कौम की अमान होते हैं, पनाह होते हैं, जब तक रसूल कौम में है रसूल जो है ना वो अमन में है, जैसे वो निकाल लेंगे तो वो अजाब आ जाएगा। वला ताजिदुली सुन्नति ना तहवीला, तो हमारा ये जो तरीका है जो सुन्नत है इसमें तब्दीली नहीं देखोगे आप, ये ऐसे ही अब भी रूह अमल होगी, माजी में इसमें कोई तब्दीली नहीं आई, अब भी नहीं आएगी। ये है ना कानून रसालत जो है, अकीम सलात अली दुलू की शम्स इला गसक इल्लैल, ये है जो साबित कदमी के लिए ना नबी अलैहिस्सलाम को खास तौर पर अहले ईमान और पैगम्बर के जरिए से अहले ईमान को भी, और खास तौर पर नबी अलैहिस्सलाम के लिए एक अलग से एक नमाज, क्योंकि पैगम्बर जिस जगह खड़े हैं इमाम की जगह पर उनको ज्यादा एहतमाम की जरूरत है। अकीम सलात, आप इस साबित कदमी के लिए नमाज का एहतमाम रखें, दुलू की शम्स इला गसक इल्लैल, अल्लाह को वकील बनाने का यही तरीका है। सूर्य के ढलने से रात के अंधेरे तक, सूर्य का ढलना होता है जो दोपहर को सूर्य ढलता है तो नमाज के औकात शुरू हो जाते हैं, जोहर असर मगरब, वैसा कि लैल जो रात का अंधेरा, इशा, चार नमाजें ही हो गई, और कुरान अल फज्र, और ख़ास तौर पर फजर का कुरान, फजर की नमाज, उसमें कुरान की जो तलावत उसको नुमायाँ कर दिया। इन कुरान अलफजरी का न मशहूदा, नुमाया क्यों किया कि ये जो कुरान पढ़ा जाता है फजर के टाइम, कहते हैं कि इसमें जो मलाइका है वो हाजिर होते हैं खास तौर पर इस कुरान को सुनने के लिए, ये खास जो है ना फजर की जो किरात है, इसलिए नबी अलैहिस्सलाम मोमन ये लंबी किरात करते थे फजर की जो नमाज है। और उसमें जो फजर की नमाज में जाहिर है जब आदमी शामिल होता है तो वो महसूस भी करता है, ये जो दिल की जो कैफियत होती है ना, तो ये फरमा दिए पांच नमाजें हो गई। वमिनल लैली, और रात के एक हिस्से में, रात में से भी, फतहज्जद भी, तो आप यानी कि उठें रात में, नींद से उठें, बेदार हूँ। तहज्जद होता है कि रात में कुछ सोना है और सोकर उठना है, ये होता है तहज्जद। तो आप उठें और फिर फरमाया नाफिला तल्लक, ये आपके लिए जो है ये जायद है, बाकी लोगों के लिए ये हैं पांच नमाजें, आपके लिए खास तौर पर ये जायद है। और इसकी तफसील वहां बयान हुई है सूरह मुजम्मल में कि आप रात को उठें और आधी रात या इससे कुछ कम कर लो या इसको बढ़ा दो। और लड़ा के बताया कि वो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या किया, कभी आधी रात, कभी एक तहाई, कभी दो तहाई, ये आपका मामूल था। बाद साहबा ने भी इसमें अमल शुरू कर दिया तो अल्लाह तआला ने मना नहीं किया, अल्लाह ने कहा कि अच्छा करना है करो, लेकिन यह है कि तुम्हारे लिए मैं रायत कर देता हूँ, पैगम्बर के लिए रायत नहीं की अल्लाह ने, इसलिए बना था नबी अलैहिस्सलाम ने आखिर दम तक इसको निभाया है क्योंकि आपके लिए लाजम था। अल्लाह ने वो दूसरे लोगों के लिए रायत कर दी कि तुम जितना मुयस्सर हो ना, जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो। इसमें तहज्जुद भी उठना और कुरान को ठहर ठहर के पढ़ना, ये कुरान ने वहां बता दिया है। असा अयब ऐसा का रब्बू का मकाम हो महमूदा, ये जिम्मेदारी इतनी बड़ी डाली गई है, और जो जिम्मेदारी क्या है कि आप इंतजार करना है और फिर यह उसके लिए ये एहतमाम करना है आपने, ये नमाजें दूसरी भी हैं तहज्जुद का कौम बेशादी रात। तो अल्लाह कहते हैं कि आप उम्मीद रखें कि इसके नतीजे में होगा क्या कि अल्लाह ताला आपको महमूद उठाएंगे, यानी आप काबिले तारीफ होंगे, वो वक्त आएगा जब उम्मतें जो है ना, इंसानियत आपकी तारीफ करेगी, महमूद खलायक होंगे। वो तो वैसे इसी दुनिया में हो गया है, आखिर में तो होना ही होना है। आपके नाम से लेकर, मोहम्मद नाम ही ऐसा है कि आप महमूद खलायक हैं। तो ये जो है ना, ये उसका जो बता दिया कि आपको जो अजर मिलने वाला है वो इंशाल्लाह वो ये होगा, वकुल रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्किन। आप ये दुआ करें कि परवरदिगार मुझे दाखिल कर, सिद्क का दाखिल करना, सिद्क सबात साबित कदमी और सच्चाई और इज्जत, ये सारे मुफाहिम होते हैं। और आखिरी दिन ही मुखरज सिद्किन, और मुझे निकाल इज्जत का निकालना। ये पीछे था ना कि ये हो सकता है कि अब आपको यहाँ से निकाल दें, ठीक है। अब इस निकालने में ये भी हो सकता है, जैसे देखें हजरत मसीह को के साथ यही हुआ ना, कि उनको लोगों ने पकड़ लिया और कि हम इनको स्लीप दे देते हैं, यही अपने तौर पर उन्होंने कोशिश यही की कि पकड़ के स्लीप दे देते हैं। अल्लाह तआला ने कैसे हजरत मसीह को वहां से निकाला, ठीक है, वहां चूंकि अल्लाह के प्लान कुछ और था, तो अल्लाह ने हजरत मसीह को उठा लिया। नबी अलैहिस्सलाम को भी ऐसे ही किया है कि उनका प्लान है कि पकड़ें और मार डालें, जो भी करें, तो अल्लाह ने पैगम्बर को वहां से निकाला है और वो हजरत मसीह को उठाया गया, आपको छुपाया गया गारे सौर में ना। और अल्लाह ने कहा है कि जब वो, कुरान ने उसका जिक्र भी किया, इज़ुमा फिल गार, जब वो दोनों गार में थे, तो ला तहज़न माना कि पैगम्बर जब अकेला है उस वक्त, वो खुदा के भरोसे पर खड़ा था। गज़वे हुनैन के मौके पर कहा ना, बहुत बेशुमार सहाबा इकट्ठे हो गए हैं हजारों की तादाद में, अल्लाह ने कहा है कि भाई अल्लाह ने तो इस अपने बंदे की उस वक्त मदद की जब वो अकेला था और उसका साथी घबरा उठा, तो अब साथी को ये कह रहे थे ला तहज़न इन अल्लाह माना, तो उस वक्त पैगंबर की मदद की है, तो अब पैगंबर वो अल्लाह अब भी मौजूद है पैगंबर की मदद को, इसलिए तुम अगर नहीं लड़ोगे, मान में नहीं आओगे, तो अल्लाह ताला मौजूद है, पैगंबर को नुसरत मिलेगी। तो वहां अल्लाह ने जिक्र किया। तो ये, और ये जी दुआ करें आपके, ये यहाँ से निकलना सिद्ध का निकलना हो, और जहाँ दाखिल जाएं वो सिद्ध का दाखिल होना हो। वज अली मिल लदुन का, और अपनी तरफ से, खास अपनी तरफ से मेरे लिए सुल्तान नसीरा, कि सुल्तान होता है कुव्वत इकतदार इख्तियार, उसको मेरा मददगार बना दे। ये हिजरत, वहाँ से घर से निकलना, ये भी सुल्तान ही की बदौलत हुआ है। जैसे हजरत मसीह की बजाय किसी और का पकड़ा जाना, हजरत मसीह बच निकले और दूसरा भी पकड़ा गया, तो वो कहते वही था जिसने मुखबरी की थी, तो वो भी सुल्तान की मदद से हुआ, अल्लाह की कुव्वत इख्तियार था। ऐसे पैगंबर जिस तरह निकले हैं मक्का से, इर्द गिर्द घेरा है और कैसे निकले हैं और रास्ते में कैसे बच के वहां पहुंच गए हैं, तो ये भी सुल्तान से हुआ है। और आगे जाकर मदीना में जो आपको नुसरत मिली है, वकुल पैगंबर, तो देखे ये था उनके जहन में कि शायद हब्श मुझे उधर से ताइफ से मदद मिलेगी, लेकिन देखें ताइफ से मदद नहीं मिली, अल्लाह ताला ने वहां से मददगार पैदा कर दिए, यसरब से, वहां से वो आए हैं और पैगंबर को उन्होंने कहा है कि आप हमारी तरफ आ जाएं, तो ये भी इस मददगार मिल गया वहां से। वकुल जा अल हक व जहक अल बातिल, आप ऐलान कर दें कि हक आ गया है और बातिल मिट गया है। ये यानी कि अभी देखा है ना, सूरह जहां शुरू हुई है, तभी मैंने अर्ज किया था कि सामने के जो हालात हैं वो बिल्कुल ही कहीं दूर दूर तक निशान नहीं है। सहाबा जो हैं जान बचा के हबशा गए हुए हैं, पैगंबर और पैगंबर के साथी जो हैं चंद साथ, वो अपनी जान बचाने के चक्करों में हैं, पैगंबर को मारने का प्लान हो रहा है, तो उसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप ऐलान कर दें कि हक आ गया है और बातिल मिट गया है। इन्नल बातिला काना ज़हूका, कि बातिल तो है ही मिटने वाला, ये ऐलान किया है। और बात, अच्छा नबी अलैहिस्सलाम ने यही आयत पढ़ी फिर जब मक्का फतह हुआ, वो जो बुत वहां पड़े हुए थे उनको उठा उठो अपने नेजे से फेंकते जा रहे हैं, और ये आयत पढ़ते जा रहे हैं जा अल हक वजह कर बात, तो इसका ऐलान पेशेन गोई 10-12 साल पहले कर दी जी। इसमें कोई नुक्ता फरमाना चाहे, इसमें एक तो ये मालूम हुआ कि अल्लाह जो वकील बनाना है ना, साबित कदम रहना है, तो वो ये उसका ये तरीका बताया गया है, नमाज। अल्लाह और बंदे के दरमियान जो ताल्लुक है ना, वो नमाज से उस्तवार होता है। इसलिए कुरान कहता है कि बाद लोगों ने क्या किया, नमाज ज़ाया कर दी। नमाज ज़ाया हुई तो अल्लाह और बंदे का ताल्लुक जो है वो ख़त्म हुआ। अच्छा, नमाज में क्या है उसका जो ना क्लाइमेक्स क्या है, वो सजदा है। कुरान कहना है वस्जुद वक्तरिब, सजदा कर और करीब हो जाओ। तो सजदा जो है ना, ये क्या है, ये इज्ज़ है, इनकिसारी है, ये तकबर का उलट है। वहाँ इबलीस ने तकबर किया, सजदे से इनकार किया, अल्लाह के हुक्म के आगे सरेंडर करने से इनकार किया। अल्लाह ने कहा है कि तू जो है ना, तू ये तकबर किया और तू ये जलील रांदा हो गया है, यानी अल्लाह कहा निकल जाए यहाँ से। वो जो कुरब उसको हासिल था, वो अल्लाह ने ठुड्डा मार गया कि दफा दे। तो नमाज क्या है, ये बिल्कुल उसके बारअक्स, बंदे को खुदा के करीब करती है। और ये है वकील बनाना, अल्लाह ताला को ना अपना कारसाज बनाना। तो इसका जहूर जो है ना, वो तरीका भी यही है। कुरान ने जगह जगह बयान किया, बनी इसराइल से भी यही कहा था कुरान ने। अभी यहाँ सूरह के शुरू में हुआ ना कि भाई तुम खुदा को वकील बनाना, जब उन्होंने नहीं बनाया तो कुरान ने सूरह बकरा में कहा ना कि भाई वस्तईनू बिसब्र वस्सलात, सलात जो है ना ये इससे मदद लो। और तो ये जो जहरा, ये जितना भी कम है नमाज के बारे में, जितनी भी हम बात करें कि नमाज असल में शुक्र है, और शुक्र का जहूर और सजदा, आजी, खुदा का कुर्ब, खुदा को आपने वकील बना लिया है, ये सारी चीज़ें नमाज से हासिल होती हैं। दूसरी तरफ वो है मामले। अच्छा, ये जो ना कुरान की तलावत, देखिए अल्लाह ताला ने जो बताया ना हमें, वो ज़ाहिर जो अल्लाह ने दीन दिया उसमें कुछ चीज़ें खास सेटिंग करके रखी दी है, उनकी अहमियत है। अब होता क्या है कि फजर की जो किरात है, एक तो ये है कि अमूमन हमारा जाना ही नहीं होता मस्जिदों में, फजर की किरात क्या सुननी है। दूसरा, अगर चले भी जाएं तो क्या पढ़ा जा रहा है पता नहीं। तो ये अगर चल कोशिश की है फिर लोगों ने अपने तौर पर कि सुबह का आगाज़ जो है ना, वो कुरान की तलावत से हो। ये बड़ी अच्छी रवायत थी हमारी कि हम उठते थे सुबह, पता चलता घर में कोई बड़ा है ना, वो कुरान पढ़ रहा है जी। ख्वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, तो वो जिस कदर भी था वो एक अच्छी रवायत थी। तो अब ऐसा ऐसा वो भी ख़त्म हो रही है, वो फिर आ गई कि चलें कुरान लगा दिया जाए सुन लें, वो भी चीज़ें ना ऐसा ऐसा। असल में यही है कि फजर के टाइम कुरान मजीद जो है ना, वो सुनना, सुनने से मुराद है कि वो हमें पता चले कि कुरान क्या क्या रहा है, इसकी खास अहमियत है। इस तरह अल्लाह ताला ऐसे नहीं जोर दे रहे, जैसे क्यामुल लैल की अहमियत है, रात को कुरान पढ़ना, रत्तिलिल कुरान तरतीला, उसकी खास अहमियत है। तो ऐसी फजर का जो कुरान है, इसकी खास अहमियत है। तो ये चीज़ कोशिश करनी चाहिए कि हम ये इख्तियार करें।
वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम।
सर ये यानी बहुत बहस होती है यहाँ पे, यहाँ मैं रहती हूँ, ये कि ये अपनी अपनी जबान में क्यों नहीं पढ़ते, हमें तो अरबी समझ में नहीं आती, तो अपनी जबान में कर लें तिलावत, जरूरत नहीं है अरबी की। तो यहाँ पे जो लिखा है फजर कुरान, फजर के वक्त कुरान तहज्जुद के वक्त का, सर ये तो खास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड है, लेकिन क्या ये मुमकिन हो सकता है कि आप अपनी अपनी जबान में कर लें?
नहीं जी, दोनों बातें ठीक नहीं हैं। ये नबी अलैहि सलाम से रिलेटेड नहीं है, जो नबी अलैहि सलाम से खास है वो आगे अल्लाह ने बता दिए, वो ना नाफिलत अल्लाह, वो तहज्जुद है, ठीक है। ऊपर ये जो ना कुरान अल फजर, ये सब के लिए ये जो
अच्छा
हुक्म है, एक तो ये बात होगी। दूसरा जी, कुरान अरबी ही है, कोई तर्जमा ये वो कुरान नहीं हो सकता, तो ये तो नहीं किया जा सकता कि
मतलब
कुरान
नमाज के वक्त ये नहीं किया जा सकता कि आप अपनी जबान में करें।
उसको सीखें, मतलब सीखें, जो भी है वो जो भी तरीका इख्तियार किया जाए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप फजर में आपने जी जो है ना वो उर्दू में कुरान पढ़ा जा रहा कलामुल्ला है ना, तो वो खास तासीर जो है ना वो उसी में है। अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं उसको एक देखे ना, उसमें हमने असालीब में पढ़ा था जो कलाम के असालीब, एक ना जबान के असालीब होते हैं, एक जो कलाम के तौर पर उसको डिजाइन किया अल्लाह ताला ने, उसमें देखें कि ये राइमिंग रखी है, ये इसका बड़ा असर होता है। ये जो राइमिंग है, ये जो सौती आहंग है ना, ये उसका हिस्सा है, जो किरात है ना। आप देखिए, एक गाना आप सुन लें या नज़म सुन लें, एक है कि आप पढ़ लें उसकी जो लिरिक्स वगैरह हैं वो ही आप सुन लें किसी से ज़रा, और उसी नज़म को आप ज़रा नसर बना लें, ज़मीन व आसमान का फ़र्क वाकई हो जाता है तासीर के एतबार से। तो यहाँ तासीर ज़ेर बहस है, वो कुरान ने असरअंदाज होना है, तो असरअंदाज होने में जो चीज़ है ना, वो जो सौती आहंगा उसका बड़ा अमल दखल होता है, तो वो
ये
सारा
भी है
वो
ना कि
फौरन।
कुछ कुरान पाक अल्फाज हैं जिनका तर्जमा किसी जबान में सही तरह से हो ही नहीं सकता, उसकी वो गहराई को नहीं पहुंचता
हाँ जी, चले
तर्जमा
वो
का।
तो मफहूम का है ना वो तो वो, लेकिन ये जो ना ये मतन जो है, इसमें अल्लाह ताला ने इसको जो ना ये क्राफ्ट किया, ये आप कोई हिला नहीं सकते इसको इधर उधर, वगैरह वो चीज खत्म हो जानी सारी। ये ऐसे ही है जैसे कोई किसी शायर का कलाम, उसको उलट पुलट लफ्ज को इधर कर दें उधर कर दें, ये नहीं।
जबूर जबूर में भी तो यही तासीर थी ना उसके
हाँ
आहंग की
बिल्कुल
वजह से, कि चरिंद परिंद भी साथ देते थे। लेकिन
बिल्कुल ऐसे ही है, तो ये
सर मैंने
कुरान।
ये सुनी है बहस, और बहुत ज्यादा कम नहीं, कि कहा जा यही कहते हैं ये बातें तो मैं समझ सकती हूँ, आप समझ सकते हैं, लेकिन हर एक नहीं समझ सकता ये तासीर वाली बात, ये हर एक को नहीं पता चलता, या सौती आहंग भी उसकी अहमियत भी नहीं समझते लोग। तो कहते हैं कि है तो समझने की चीज, तो फायदा क्या कि हम इसको बगैर समझे ऐसे पढ़ते चले जाएं।
नहीं, वो समझ लें, वो सारा दिन पढ़ा होता है ना, तो उसको तलावत करें, समझें उर्दू में, समझें अंग्रेजी में, समझें। बात तो हो रही है कि ये फजर की नमाज में क्या हम अरबी कुरान की जगह कुछ और पढ़ सकते हैं, यह मसला
जी यही
है।
मैं सवाल पूछ रही हूँ।
हाँ, ये नहीं, इसकी नहीं इजाजत दी जा सकती
ठीक है, मतलब
कुरान
किसी
जो।
भी
हाँ,
नमाज में।
किसी की नमाज बन गया वो, बाकी आप नमाज के बाद खोल के बैठ जाएं, उर्दू पढ़ें, अंग्रेजी पढ़ें, जो मर्जी पढ़ें, इसमें भी इस तरह तो वो सारा कुछ जो है ना वो खत्म ही हो जाएगा, कुरान रहेगा ही नहीं। जो कुरान के अलावा चीजें हैं ना उनके बारे में हम कह सकते हैं जी, मसलन दुआ मांगनी है तो मांगे आप उर्दू में, मांगे जिस जबान में मर्जी मांगे। कुरान तो चूंकि एक कलाम है ना, उसको नहीं चेंज किया जा सकता, बाकी चीजें कलाम नहीं है। और आपने तशहुद का मौका है, वो तस्बीहात का मौका है, तो कर लें आप अपनी जुबान में जो भी करें, कुरान को नहीं कर सकते।
और सर तहज्जुद का हुक्म तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था, आपने कहा कि सहाबा ने शुरू किया तो रोका नहीं आप अल्लाह
दो
ने।
तरह की चीजें होती हैं, कुछ चीजें नबी अलैहिस्सलाम के लिए जब हुक्म दिया जाता है ना, तो उसमें अगर सहाबा करने लग जाते हैं तो अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाते हैं और ज़ाहिर है उसका अजर मिलेगा, अल्लाह रोकते नहीं है। उसकी एक मिसाल ये है, वाज़ अल्लाह ने यहाँ भी बताया गया कि नाफिलतन लक है, आपके लिए ये जायद है, वहाँ भी सूरह मुज़म्मल से भी वाजे है कि आपको कहा जा रहा है। तो फिर आखिर में पता चल गया कि अच्छा सहाबा भी साथ शामिल हो गए हैं, तो अल्लाह ने रोका नहीं, लेकिन उनके लिए रियायत पैदा कर दी अल्लाह ने। रसूलुल्लाह को रियायत नहीं दी अल्लाह ने, सहाबा को रियायत दे दिया कि वो
रियायत से आपका मतलब
बताओ।
कि वो पढ़ें या ना पढ़ें,
हाँ
ये
नहीं,
रियायत।
वो तो पहले ही थी जो पढ़ना चाह रहे हैं ना, क्योंकि हुक्म ये है ना ऊपर कि भाई पैगम्बर ने पढ़नी है तो आधी रात इससे कुछ कम या इससे ज्यादा कर लो। अच्छा, पैगंबर ने इस हुक्म पर अमल कैसे किया कि कभी एक तहाई रात, कभी दो तहाई रात और कभी आधी रात, ये आपने किया। अब सहाबा तो यही सोचेंगे ना कि जिसने ये नमाज पढ़नी है तो उसको इतना ही टाइम देना चाहिए जितना पैगंबर दे रहे हैं, क्योंकि हुक्म तो इस शर्त के साथ दिया गया है ना नबी अलैहिस्सलाम को। तो अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं भाई, तुमने अगर पढ़नी है ना तो तुम लोगों के लिए ये शर्त नहीं है, ये आधी रात या कुछ कम या ज़्यादा, तुम जितना पढ़ सकते हो कुरान ना, असल तो मकसूद वो है, वो पढ़ लो। और आगे वजह भी बता दी कि ये रियायत मैं क्यों दे रहा हूँ तुम्हें, वो बता दिया कि तुम्हारी मसरूफियात और होंगी, किसी ने जहाद में शरीक होना है, किसी ने सफ़र करना है, वो कमाने के लिए, एक बीमार हो सकता है, कुछ मसला हो सकता है, तो तुम्हारे लिए रियायत है ये।
ये राज स्कूल वाले ने क्रिएट आम लोगों पर नहीं किया, घर के लोग जिनके पीठे उनके बिस्तर पर रातों को अलग रहती है, तो उसकी तफसीर में ये तहज्जुद का उठना है, मतलब ये एक इंटरप्रिटेशन है उसकी।
मैं नहीं समझ, आवाज कट रही थी पहली जो बात की ना, और मैं नहीं समझ सका। अब दोबारा जरा बता दीजिए।
ये बात बिल्कुल कट गई है, टाइम
अच्छा अच्छा
हो चला। सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम असलम।
सर, सूरह मुजम्मल में जिस तरह एडिशन की गई है इसी की, के एक तो इनके लिए नाफिला नमाज एडिशनल, और उसमें अल्लाह ने यह भी फरमाया कि उनके साथ जो अल्लज़ीना माक, जो एक ग्रो भी है, तो इसका मतलब ये है कि वो सहाबा का ग्रो है, या इसके अलावा जो आज के मुसलमान हैं वो भी उस ग्रो में शामिल।
नहीं, वो वहां अल्लाह ताला बता रहे हैं ना, रसूल्ला के हुक्म दिया गया, अल्लाह
जी
ताला ने कहा कि भाई हमने देखा है कि आप ये काम कर रहे हैं जो आपको हुक्म दिया गया था, तो और हम ये भी देख रहे हैं कि आपके सहाबा का भी एक ग्रोह ना आपके साथ ये काम कर रहा है।
आपके साथ काम कर रहे जी।
हाँ, तो वहां अल्लाह ने कहा है कि भाई ये ठीक है कर रहे हैं, लेकिन मैं रियायत अब
जरूरी नहीं
देख
है
रहा हूँ।
उसके लिए,
नहीं, जरूरी तो
लेकिन
पहले उन्होंने
उसको
कहा।
उसको सर फॉलो करके आज के मुसलमान भी तो कर सकते हैं फिर, यानी
हाँ जी,
एक
जाहिर है,
इबादत की वो है, बात
बिल्कुल
हायर
फर्ज करते
लेवल
भी
है
हैं कि पूरी उम्मत करती है, लोग हर मेले
करते हैं जी।
में या घरों में आमतौर पर लोग तहज्जुद का, कोई ना कोई बंदा ऐसा होता है, होता ही है कि बड़ी उम्र में जाकर ही ख्याल आता है, लेकिन करते हैं तहज्जुद
जब नींद नहीं आती
का। इतरावी देखी ना, गांधी साहब वो कहते हैं कि उसी का ही है जहूर, उम्मत ने
जी।
देख किस पैमाने पर ये कर डाला है।
दूसरा सर, एक और पिछली आयत आपने डिटेल्स फरमाई, तो उसमें जो दुनिया में अंधे हैं वो आखरत में भी अंधे उठाए जाएंगे, यानी ये अंधापन तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि इसमें तो फिर आपके जो बंदा जिस नॉलेज बेस को फॉलो कर रहा है, क्रिश्चियन है, जूज है, मुसलमानों में भी बहुत सारे फिरके हैं, तो ये क्या मतलब, बड़ा मुश्किल है कि उसमें से अंधे कौन है, और जो अकल वाले हैं जो उससे कुछ फायदा हासिल कर रहे हैं, राह रास्त पे हैं, वो कौन है, तो इसको आप कैसे कैटेगराइज करेंगे अंधे।
वो हमें नहीं करना, वो अल्लाह ताला करेंगे। उसूल ये बता दिया अल्लाह ताला ने कि एक है फितरत में जो रोशनी मौजूद है, वो अल्लाह ताला देखेंगे कि उस रोशनी को उन्होंने इस्तेमाल किया है कि नहीं किया। दूसरी, अगर पैगंबर ने जो नूर लेकर आए ना, ये भी तो नूर है, कुरान ने कहा है, तो ये रोशनी जो है ये उस तक पहुंची है, तो इस नूर से उसने कितना फायदा उठाया, तो ये दोनों की बुनियाद पर अल्लाह ताला फैसला करेंगे कौन
यानी
होगा।
फर्दर जो उसमें मसालिक हैं या फर्दर डिवीजन है, वो हो सकता है कि फिर उसमें उनकी बचत हो जाए,
हाँ,
लेकिन
वो तो देखें, वो जो चीज़, वो तो ये वो मिसाल मैं देता हूँ आपको जी, गांधी साहब ने ये विरासत का कानून जो ना, वो मुख्तलिफ राय अख्तियार की है उम्मत से हटके ना। अच्छा, अब फर्ज करें कि ये राय ठीक है उनकी, तो क्या इसका मतलब ये है कि जिन्होंने पिछली आरा के मुताबिक विरासत तकसीम की है तो वो गलत है, यानी कि वो पूछ गछ होगी, या वो नूर से फायदा नहीं उठाया, या वो
या उसकी
अंधेपन,
समझ में डिफरेंस आ गया।
या वो अंधेपन का शिकार हो गया। जाहिर है ये जो इख्तलाफात है ना, इस तरह के शरीयत के फहम के जो इख्तलाफात है ना, ये नहीं जेर बहस होते, ये सब नूर का ही रास्ता है, ये सब रोशनी में ही जी रहे हैं।
रोशनी की प्रिज्म है जी।
ये क्या कर रहे हैं कि उसी नूर से फायदा उठा रहे हैं, उसको समझने में एक दूसरे से इख्तलाफात हो रहे हैं बस। ये नहीं है कि लोगों ने इस नूर को उठा के साइड पर रख दिया, कहे नहीं जी हम अपने मामला खुद ही हल करेंगे, ये नहीं इख्तलाफात, ये नहीं जेर बहस।
और गांधी साहब के फेम में तो वो फिर उन पे पकड़ भी नहीं है। अगर स्कॉलिस्टिक लेवल पे इख्तलाफ आप करते हैं तो उस पे
नहीं
खुदा की पकड़ नहीं हो सकती।
बिल्कुल भी नहीं,
जी
पकड़ यह है कि वो नूर जो फितरत में दिया गया है उससे इख्तलाफ कर रहा है। हालांकि अलहमा फजूर व तकवा, मैंने कहा हदई ना नजदईन, दोनों रास्तों समझा दिए हैं, बता दिए हैं, वो उससे वो इनकारी है, वहाँ जो है ना रोशनी और अंधेरे में फर्क नहीं कर रहा, वो उस पर पकड़ होगी। दूसरा जब पैगंबर आ गए हैं एक नूर लेकर, और वो नूर पैगंबर ने पहुंचा दिया है लोगों तक, इस हद तक पहुंचा दिया है कि पैगंबर ने खुद पहुंचाया वहां, और 23 साल के बाद अल्लाह ताला फिर भी कह रहे हैं कि अभी भी कोई बंदा कहता है ना कि ये रोशनी मुझ तक नहीं पहुंची, तो इसको मौका दो, इसको ये कुरान जो है ना ये इस पर गौर करने दो, इसको फैसला करने दो। तो अब वहां ये हालत है, तो आजकल के जमाने में तो आप देख लें फिर वो पैगंबर का दिया हुआ नूर जो है ना वो किस आदमी तक पहुंचा है और किस सूरत में पहुंचा है, इसलिए ये अल्लाह ही फैसला करेंगे।
अभी तो सर गोल्डन टाइम चल रहा है कि नॉलेज जो है आपकी फिंगर टिप्स पे, और हर कोई बंदा अगर थोड़ा सा भी शहूर रखे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो सकती हैं,
ये
किसी
बताएं
जमाने
मुझे
में नहीं
मक्का
पहुंच
में,
सकता
नहीं
था।
नहीं नहीं मुझे ये बताइए मक्का में
जी
कितनी आबादी होगी, कितना बड़ा एरिया होगा?
छोटा सा, जी
अच्छा कितने साल लगे हैं बात समझाने में, पैगंबर समझा रहे हैं समझा रहे हैं,
25 साल के ऊपर। जी
इतना यानी कि वहां सबसे बड़ा मसला ही ये बन गया, और इसके नतीजे में जंगें हो गई, उसके बावजूद अल्लाह कह रहे हैं कि अभी भी वो कह रहे हैं ना कि बात समझ में नहीं आई तो उसको समझाओ। ये इंसान जो ना ये बहुत पेचीदा,
मुश्किल है। हाँ
इसलिए ये कहना कि अब जी हर घर में कुरान पहुंच गया है, हर बंदे की जेब में मोबाइल फोन है तो सारा कुछ जानते, ऐसा नहीं होता।
और उनको अरबी भी आती थी।
हाँ उनका अपना सामने उनकी अपनी जुबान है, अपना
नहीं
सारे
नहीं
मामले।
सर, मैं उस फैम में कह रहा था कि किसी जमाने में लोग 6 6 महीने ट्रेवल करके एक हदीस कलेक्ट करते थे, तो अब तो मतलब है हर चीज, अगर आप
हाँ वो
रिसर्च
ठीक है,
करना चाहें।
वो
जी
अल्लाह ने जो हाँ जी सहूलतें दी हैं वो
सहूलतें दे
तो,
दी है ना आप तो। जी
लेकिन इसकी हम ये कहें कि इसके नतीजे में हर बंदे पर इत्मामे
नहीं
हुज्जत हो गया है, तो
नहीं
ये नहीं सही।
नहीं वो फिर वही है ना कि आप गफलत में हैं, तो फिर गफलत में तो कोई भी चीज होगी आप नहीं सुनेंगे
वो
वो।
तो अल्लाह ने देखना
हाँ
है,
हाँ
पता चले कि पैगंबर के हमसाए में एक बंदा है तो और वो दयानतदार है, लेकिन उसको बात समझ में नहीं आई, तो
जी
अल्लाह ताला उसको रियायत दे देंगे।
सही
और
कह रहे हैं।
दूसरी तरफ पता चले कि कोई अमेरिका में बंदा बैठा है और उस पर इत्मामे हुज्जत हो गया, तो अल्लाह ताला पकड़ लेंगे उसको। ये कुरान ने ना सूरह बय्यिना में यह जब बयान किया, वहां अल्लाह ताला ने, हालांकि बय्यिना जो है वो मक्का में है सूरह जो है, तो वहां अल्लाह ने कहा है कि मुशरकीन और ये अहले किताब, हालांकि अहले किताब तक अभी दावत गई भी नहीं, वो फिर वो इसका मतलब है कि किसी पर तो इत्मामे हुज्जत, जैसे सूरह बकरा में अल्लाह ने कह दिया है, मदीना में जाते ऐलान कर दिया कि जिन्होंने ये फैसला कर लिया ना ना मानने का, ये नहीं मान लाएंगे, ये अल्लाह ने जो है ना बता दिया उनके बारे में, ये अल्लाह ही बता सकते थे कि कौन से ऐसे लोग हैं जो पहले दिन ही जिन पर इत्मामे हुज्जत हो गया, ये कुरैश में से भी और उनमें से भी, मक्का में बैठे हैं पैगंबर, दावत अभी मदीना में आई भी नहीं है, और अल्लाह ने वही बता दिया कि अहले किताब में कई लोगों पर तमाम हुज्जत हो गया, ये
सर
तो
वक्त
खैर
भी
चले
हो गया।
ठीक है जी, ये तमाम में वक्त भी हो गया जी। तल्ला साहब आप कुछ
शुक्रिया
बताना
सर।
चाहते, तल्ला
जी नहीं
साहब ने हैंड रेज किया, कुछ बताना चाह रही शायद जी, बताइए।
बस हुआ है तो मैं कह देती हूँ क्या बात थी वो लोग
आवाज क्लियर कट
आपकी
गई,
आवाज कट गई। हाँ
हम समझ नहीं सके जी आपकी बात, चलें
सर
चलें जी
अभी आ
फिर।
रही है आवाज?
हाँ जी आप आ रही है, बताइए।
सर मैं बाद में पूछूंगी क्योंकि वो इंटरनेट प्रॉब्लम हुई हुई, फिर बात बीच में हो जाएगी,
ठीक है
नेक्स्ट
जी
टाइम पूछूंगी
चलें
सर।
चलें
सर
ठीक
ये
है।
उनकी
रात का
आवाज
टाइम
का
कम हो गया है क्या? पहले तो 1.5 घंटे नहीं होता था। वो भट्टी साहब बूढ़े होते जा रहे हैं तो ज्यादा
सही बात।
देर
नहीं तो वो डॉक्टर मुनीर साहब नहीं ना बात कर रहे आजकल, शायद उनका भी इंटरनेट खराब हुआ हुआ है।
चले जी फिर इंशाल्लाह बाकी
सर मेरा लेकिन एक
अपने।
सवाल है, और सर
हाँ जी दिला साहब।
मैं जो आए थे ना जहां पे खुदा ने ये कहा कि इसके जो खास बंदे होंगे उन पे जोर नहीं चलेगा,
हाँ जी
तो वो खास बंदे क्या ये पैगंबर और रसूल ही हैं या उन्हीं
नहीं,
से
वो बता
मुताल्लिक है
दिया
वो?
वो वकील कहता है कि जो मुझे वकील बनाएंगे ना, जैसे जो मेरे बंदे बनकर जीने का फैसला करेंगे, ये है असल में। ठीक है, और जैसे मुवज्जतैन में कहा है कि भी वो जो मेरी पनाह में आ जाएंगे असल में, ये वो है उसके बंदे। और जैसे पैगंबर को तरीका बताया कि आप भाई ये ना, आपने सावध कदम रहना है तो ये काम करें, तो ये हैं वो खास बंदे। यूं समझने के खुदा के साथ जो ना जो ताल्लुक है जो रखेंगे, और उसका जहूर होता है नमाज की शक्ल में।
खास कोई चुने हुए बंदे हैं, मुझे ऐसा लगता है उस आयत को पढ़ के। अच्छा
नहीं, कोई चुने हुए नहीं है, वो जो फैसला ये करेंगे चुने हुए ही हो गए असल में। वो कि आम बंदा भी हो सकता है, खास भी हो सकता है, वो असल में तो चुनाव ही होता है। ये जो तौफीक मिलती है ना, ये भी चुनाव ही है ना। वो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने चुन लिया, तो इसका मतलब है कि तो अल्लाह ताला की तौफीक ही से मामला होता है। लेकिन तौफीक क्या होती है कि बंदा कदम उठाता है एक, अल्लाह ताला आगे से 10 कदम उठाएंगे, मुआफ़कत पैदा कर देते हैं। एक बंदा जो अल्लाह तो मेरी तरफ आता है, मैं उसकी तरफ जाता हूँ, फिर मुआफ़कत पैदा हो जाती है उससे। आगाज बंदे की तरफ से होना चाहिए, वो तौफीक अल्लाह ताला ही देते हैं जाहिर है। वगरना तो ये चुन लिया जिनको, वो अल्लाह के बंदे हैं, बाकी फिर ऐसी कोई ड्रामा ही चल रहा है फिर।
हाँ ठीक है,
अच्छा जी, फिर आप लोगों के पता नहीं किन ममालिक में आप लोग रहते हैं, इंटरनेट आप सब के। हम तो बड़ा सुनते हैं जी अमेरिका है, उसमें बड़ी सहूलतें हैं, ऐसा है, कोई कनाडा में बैठा है, उधर
फिर
बैठ।
वो
हम तो फिर हेलो
आवाज आ रही है मेरी आपको?
आ रही आ रही है।
हेलो
जी,
सर, वो हुआ
बताइए।
ही, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो बिजली की तारें लगाने वाले आए, उन्होंने इंटरनेट की केबल काट दी है, ये हुआ है। जमीन खोदी
अच्छा,
जब उन्होंने अपनी तारें डालने के लिए, तो इंटरनेट का हमारा इंटरनेट की सारी पूरी नेबरहुड में इंटरनेट की जो
जी
केबल थी उन्होंने काट दी है, तो वो दोबारा
वाईफाई,
लगेगी तब। अभी तो
इसका तो मसले
ये
हर जगह
हुआ है।
हैं।
जी
इंसान जहाँ है वहां मसले हैं सर,
जी
अमेरिका हो या
बिल्कुल।
पाकिस्तान। इसलिए हम अच्छे हैं, कभी ख्वाहिश नहीं कीजिए कि यार वहां चलना चाहिए, वहां चलना
नहीं
चाहिए।
सर, बेहतरीन है पाकिस्तान
बिल्कुल ठीक है,
इंशाल्लाह।
चले। अच्छा जी, फिर अल्लाह
ओके सर,
हाफिज।
अल्लाह हाफिज, अल्लाह
जी।
हाफिज रखे सबको।